ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. பாபா பட மீட்டா ஹை, பியாரா ஹை, பூலா ஹை, கிஸ்கா ஹை? பாபா கிஸ்கா ஹை? மேரா ஹை. கிஸ்கா ஹை? மேரா ஹை. பாபா மேரா ஹை, ஹமாரா நீ கேனே கா ஹை. மேரா, பூரே கா பூரா மேரா ஹை. கிஸ்கோ யே தில் சே அனுபவ ஹை கி பாபா மேரா ஹை? ஹாத் உடாவோ. ஜிஸ்னே பாபா சே தில் சே பாத் கி ஹை வோ ஜரா ஹாத் உடாயே. ஹாம், கௌன் சி பாஷா மே பாத் கி தி? ஹிந்தி மே. ஹிந்தி மே. ஜினோனே பாபா சே ஹிந்தி மே பாத் கி தி வோ ஜரா ஹாத் உடாவோ. பாப் ரே. ஆர் ஜினோனே இங்கிலீஷ் மே பாத் கி தி வோ ஜரா ஹாத் உடாவோ. நீ அச்சா, ஜினோனே அப்னி லோக்கல் பாஷா மே பாத் கி தி வோ ஜரா ஹாத் உடாவோ. பாபா நே க்யா கஹா ஜப் ஆப்னே பாத் கியா? தோ பாபா கௌன்சி பாஷா மே போல் ரே தே? ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், உர்து, கௌன்சி பாஷா மே? ஹிந்தி மே. ஓ, தபி கம்யூனிகேஷன் அச்சா ரா நா. பாபா ஹிந்தி மே பாத் கர் ரே தே, ஹம் பி ஹிந்தி மே பாத் கர் ரே தே. பஹுத் அச்சா. சங்கம் யுக் கி யஹி விசேஷதா ஹை கி ஜிஸ் பாஷா மே மே போலூ, மேரா பாபா உசி பாஷா மே போலே. ஆர் ஜோ மேரே பாபா கி பாஷா வோ மேரி பாஷா. பாபா ஹிந்தி மே முரளி சலாத்தே தோ மேரி ஹிந்தி மே பாபா சே பாத்சீத் ஹோதி ஹை. லேகின் ஆக்சுவலி பாபா சே பாத் கர்னே கி பாஷா ஹை சைலன்ஸ். சுனா, கௌன்சி பாஷா பாபா போல்தே ஹை? சைலன்ஸ் கி பாஷா. பாபா கே ஜின் பச்சோ கோ சைலன்ஸ் கி பாஷா ஆதி ஹை வோ ஜரா ஹாத் உடாயே. ये साइलेंस की भाषा हमारे पास एक अमोद अस्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र. पता नहीं कौन कौन से अस्त्रों की बात करते हैं. हम बच्चों के पास सर्वश्रेष्ठ दिव्यास्त्र जो है वो है साइलेंस, लेकिन हमें उसका यूज कितना करना आता है. करना भी आता है, हम करते भी हैं तभी कुछ पाते हैं. लेकिन पुरुषार्थी जीवन में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जैसा यूज करना चाहिए उतना हम साइलेंस को यूज नहीं कर पाते हैं. हमें पता है, हमें आता भी है उसके टेक्निक्स. दूसरों को समझाना हो तो बड़ी अच्छी तरह से समझा सकते हैं. पता है, साइलेंस में इस प्रकार से रहो तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी. ये अमोद अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है. बहुत सारे अनुभव भी हैं, ऐसी बात भी नहीं. उस अनुभव के आधार पर भी बता सकते हैं. लेकिन कभी कभी क्या देखने में आता है, आपने कर्ण के बारे में सुना है? शास्त्रों में कर्ण का आता है. उनको उनके ही गुरु ने एक श्राप दे दिया. क्या श्राप दिया था? हाँ, पता है, शायद किसी प्रकार के अवज्ञा के कारण हम बाबा के बच्चे भी ठीक टाइम पे इस अमोद अस्त्र को यूज नहीं कर पाते हैं. अभी बड़ी दीदियों की साइलेंस भट्टी चल रही है. मेरा सौभाग्य है उनके साथ बैठने का, मुझे भी मौका दिया है दीदियों ने. तो मैं उस बात को रियलाइज कर रही थी कि हम कारोबार में इतने भागने लग जाते हैं, सेवाओं में इतने उड़ने दौड़ने लगते हैं कि साइलेंस को एडमायर करना थोड़ा कम हो जाता है. वो अमोद अस्त्र जिसे हम हर समय चला सकते हैं. ब्रह्मास्त्र में तो लिमिटेशन होता है ना कि आप अमक सिचुएशन में ही ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं. लेकिन ये वो दिव्यास्त्र है जिसे हम हर समय प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं. और उतना ही नहीं, राइट टाइम पे भूल जाते हैं. ऐसा अनुभव है किसी को? ऐसा अनुभव है? कि सबको जिसको लगता है कि नहीं ज्यादा समय तो हम साइलेंस के पावर को यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी चुक हो जाता है, वो जरा हाथ उठाए। अच्छा, वो जो बच्चे सोचते हैं नहीं ज्यादा समय चुक हो जाता है, कम समय ही यूज कर पाते हैं, वो जरा हाथ उठाइए। नहीं, अच्छा, सब लोग इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन मुझे आज रियलाइज हुआ, योग करते हुए आज 5:30 से 8 बजे तक मैंने देखा दीदियों ने करवट भी नहीं बदली। मैं सबको वहां बैठ के देख रही थी, कोई ऐसा भी हिल नहीं रहा था, कोई मच्छर आए तो उसको भी उठाने के लिए हलचल में नहीं आ रहे थे, एकदम सीधा एकाग्र होकर के बैठे हैं 2.5 घंटा साइलेंस में। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि जिस प्रकार से हमको साइलेंस की शक्ति को यूज करना चाहिए, साइलेंस के अमोद अस्त्र को यूज करने की हमारी जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसमें से हम बहुत थोड़ा यूज कर रहे हैं। होता है कि नहीं? देखो, किसी ने कुछ कह दिया तो क्या होता है, तुरंत आवेश में आ गए। चाहिए क्या मां? क्या चाहिए? साइलेंस की शक्ति चाहिए, आवेश में आ गए। कोई चीज इधर से उधर हुई, जब ढूंढने लगते हैं तो व्यस्तता में आ जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, साइलेंस की शक्ति भूल गई। और हम सारी दुनिया को बताते फिरते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइलेंस की शक्ति है, ऐसा बताते ना। लेकिन हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए क्या रेगुलर जीवन में भी इस अस्त्र को जितना यूज करना चाहिए नहीं कर पा रहे। देखो, दुनिया वालों को जब हम सुनाते हैं ना साइलेंस की बात, तो उनको एक एग्जाम्पल देते हैं कि बड़े से बड़ी परिस्थिति का सॉल्यूशन साइलेंस में है, लेकिन हम थोड़ा सा वक्त साइलेंस का नहीं निकालते हैं। अगर निकालें तो हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमसे बड़ा और कोई अच्छा डॉक्टर एडवाइजर नहीं है, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम का पता है उसके पास ही सॉल्यूशन है। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, कितना बता पाएंगे प्रॉब्लम को, कितना बता पाएंगे? एक पेड़ था वहां पे, लेकिन वो पेड़ नीम का पेड़ था, हाँ, अशोक का पेड़ था कि बड़ का पेड़ था, वो मैं कैसे जानूंगी? ठीक है कि नहीं? तो आप चूंकि सर जमीन पे हैं, आपको सारे सिचुएशन का पता है, तो आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन कैसे मिलेगा? साइलेंस में जाने से। मैं कह रही थी जो कहानी की बात दुनिया वालों को हम बताते हैं। एक बार एक एग्रीकल्चर ऑफिसर, हाँ, खेती बाड़ी का जो ऑफिसर था, वो गांव में गया था लोगों की खेती करने का स्टाइल देखने के लिए, कैसे लोग खेती करते हैं, हल वगैरह कैसे चलाते हैं इत्यादि। तो देखने भागा, दौड़ी में उसके हाथ की घड़ी वहां गिर गई, ठीक। और फिर जब वो आए तो उन्होंने देखा घड़ी नहीं है, ढूंढने लगे। पास में बच्चे खेल रहे थे, उनको भी बुलाया, भाई दौड़ो दौड़ो, देखो हमारी घड़ी गुम हो गई है। किसी को नहीं मिला। उस समय एक छोटा सा बच्चा आया, उसने कहा घड़ी मैं ढूंढ सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक काम करना होगा। क्या करना होगा? कहा सबको यहां से चले जाना होगा, आप लोग उधर चले जाओ, मैं पीछे से घड़ी को ढूंढ के आपको देता हूं। सब लोग चले गए, फिर क्या हुआ? बच्चे ने घड़ी लाके दे दी। तो सब लोगों ने उससे पूछा, भाई तुमने कैसे ढूंढा? तो उसने कहा मैंने साइलेंस में ढूंढा। जब आप सब चले गए, एकदम सन्नाटा साइलेंस हो गया, तो मुझे उसकी टिक टिक की आवाज आई, मैं उस डायरेक्शन में गया और ढूंढ के ले आया। देखो कितने इंस्पायरिंग स्टोरी है। जब कभी कोई बात आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं? इशू बनाते हैं, उस बात को बड़ी बना देते हैं, है कि नहीं? ऐसा हुआ जी, वैसा हुआ, उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा सोचा, और फिर उसमें उलझ जाते हैं। उस उलझन का इको यहाँ चलता रहता है। आपने वो देखा है, बर्तन होते थे ना, कांसे के तांबे के, उसमें ऐसे कर दो फिर क्या होता था, चलता रहता था, है कि नहीं, इको उसका होता रहता था। हमारा ये सिस्टम कुछ ऐसा ही हो गया है, छोटी सी बात का इको इफेक्ट बहुत समय तक चलता रहता है। वो भी हमने देखा, जब चुपचाप बैठो ना आप, अपने थॉट्स को देखना आपको हंसी आएगी। वैसे तो हम सोचते हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन बिल्कुल बड़े नहीं हुए। माना ज्ञान के हिसाब से समझते ना, इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इतने बाबा के अनन्य बच्चे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो फिर जब देखते हैं अरे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जितना ध्यान देना चाहिए हमने ध्यान नहीं दिया, बड़ी आसानी से सहजता से जीवन को लेना शुरू किया। कभी कभी उस सहजता में थोड़ा सा डाइल्यूट हो गए। वैसे देखा जाए गलती कुछ नहीं की है, वो बैठे बैठे वहां, क्योंकि हॉल है मेडिटेशन हॉल, तो बचपन याद आया। हम मधुबन में पहली बार 1979 में आए, एक्चुअली 75 में ज्ञान में आ गए थे, लेकिन उस समय बच्चों को मधुबन में आना वैन था, पता है ना आपको वो कहानी पता है। फिर बच्चों ने दादी को चिट्ठी लिखा कि दादी बाबा सिखाते हैं आत्म अभिमानी बनना, लेकिन आप सबसे बड़े देह अभिमानी हैं, क्योंकि आपने हमारी आत्मा को नहीं देखा, हमारे शरीर को देखा। हम तो वही 5000 वर्ष पुराने वाले बच्चे हैं, ठीक है कि नहीं। जो भी हो, बहुत अच्छी वो कहानी थी, जिसके बाद दादी जी ने बच्चों को छुट्टी दी थी मधुबन में आने की। तो 1979 में ही हम पहली बार मधुबन आए थे, मेडिटेशन हॉल में बैठे थे और वहां बाबा से मिले थे। क्योंकि हम ही बच्चे थे, तीनों जने भाई बहन, तो हमको आगे बैठने को चांस मिला था बिल्कुल एकदम। उस समय तो और थोड़ा आगे और थोड़ा आगे ऐसे आके बैठ जाते थे। अभी कहां डायमंड हॉल, तो सब बातें याद आ रही थी। और वो गीत एक याद आया जिसमें एक स्टैंजा है, तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, ये मेरा दिल कहे तो क्या, जो भी मतलब एक गीत है, लेकिन उसमें एक लाइन ये है, तो वो जैसे कानों में गूंजने लगा कि भाई तब से आज तक की जो यात्रा है कैसी यात्रा रही। हाँ, कहने को हम कह सकते हैं हमने कोई भूल नहीं किया है, कभी थोड़ा भी इधर उधर बाबा के नियम धारणाओं से कभी इधर उधर नहीं हुए। बाबा ने बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन में हमेशा रखा, बहुत अच्छा। लेकिन जब बात ये आए कि शक्तियों का उपयोग कितना किया, क्या हिसाब देंगे बाबा कि मैंने तुम्हें अमोद अस्त्र दिए, दिव्यास्त्र दिए, तुमने उन दिव्यास्त्रों का क्या प्रयोग किया, बोलो। अब सोचो 12 साल वो इधर उधर जाके घूम के दिव्यास्त्र इकट्ठा किया, किसने किसने, अर्जुन ने। और ठीक जब युद्ध का समय आया तो पानी में बैठ गया, ठीक है कि नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा ने इतने सारे दिव्यास्त्र जो दिए हैं उसको हम ठीक वक्त पे जैसे यूज करना चाहिए वैसे यूज नहीं कर रहे हो। और अगर हमारे इस जीवन के चार्ट को कोई दुनिया वाली आत्मा देखे, ऐसी तेज वाली आत्मा, वो कहेगी कि भगवान ने सिलेक्शन करने में गड़बड़ी कर दी। जितनी शक्तियां उसने तुम्हें दी है, अगर उतनी शक्तियां उसने हमें दी होती, मुझे दी होती, तो देखते मैं बाबा को एक दिन में प्रत्यक्ष कर देता। मैं बाबा के लिए ये कर पाता, वो कर पाता। मैं उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग इस प्रकार से करता, उस प्रकार से करता। ठीक, तो जो भी हो, ये जो मनन चिंतन चल रहा था आप लोगों से शेयर किया, तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि ये साइलेंस की शक्ति को मैं कितना यूज करता हूं। क्योंकि लास्ट में यही शक्ति काम में आने वाली है। कोई माइक नहीं होगा, कोई भाषण नहीं होगा, कोई सुनने सुनाने वाली बात नहीं होगी, क्या काम में आने वाला है। बहुत समय से इकट्ठी की हुई ये ताकत हमारे काम में आने वाली है। एक्चुअली बहुत छोटे छोटे तरीके से हम इसे प्रैक्टिस करके इकट्ठा कर सकते हैं। एक बार इसका टेस्ट बैठ जाए तो बड़ा आनंद आए। बैठता तो है टेस्ट, जब कोई कह दे भाई जाओ अभी क्लास कराओ, तुरंत साइलेंस में चले जाते, बाबा आप क्या बोल रहे हैं, क्या क्लास कराए, कहीं भाषण करने जाना है, बाबा बाबा कह रहे साइलेंस में जाते हैं, शक्ति दो फटाफट बाबा, फिर देखता है बच्चे को मदद की जरूरत है, आ जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं। तो आज एक बात तो पक्की करनी है, क्या पक्की करनी है, सब लगभग सेवाधारी माताएं भाई बहने बैठे हैं, तो ये सब माताएं भाई बहने जब तक मधुबन में हैं, तो इस अमूत अस्त्र का प्रयोग करें, आपस में बातचीत करके या इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना समय हो सके साइलेंस में सेवा कर रहे हैं और थोड़ा अंदर चले गए और बाबा से बातचीत करना शुरू कर दिया। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है। देखो, एक होता है अकेलापन और एक होता है एकांत। सुना, क्या सुना, एक होता है अकेलापन, एक होता है एकांत। बहुत थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है, आप अकेले हैं, कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। तो क्या हुआ, सारे दुनिया को आपने भय का वाइब्रेशन दे दिया और लगे बल्ले बल्ले मैं तो अकेला हूं, मेरा बाबा मेरे साथ है, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं और बुद्धि को लगाने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरा बाबा कोई डिस्टरबेंस देने वाला नहीं है। सुना, तो अकेले एकांत अगर आपको मिल रहा है और आप साइलेंस में हैं, आप जगत पे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। लेकिन प्रेशर कुकर का सिटी तो बंद है पर फ्लेम बहुत जोर से है, तो क्या होगा, बैठे एक अकेले में हैं और संकल्प जोर शोर से चल रहा है, तो क्या होगा। हाँ, बहुत बहुत, कल भी एक बात मैंने दादी की नोटिस की और मुझे बहुत अच्छा लगा। दादी को बुलाया गया, दादी कुछ बोलिए, टीचर्स की भट्टी चल रही है। दादी आई, बैठी, कहती 3 मिनट साइलेंस में बैठूंगी उसके बाद बोलूंगी। क्या बोलूं, ये तो सब टीचर्स है, क्या बोलूं। फिर कहा 3 मिनट साइलेंस में बिठाओ, और वो 3 मिनट पहले वाली दादी और 3 मिनट बाद वाली दादी में बहुत अंतर। सुना, 3 मिनट पहले वाली दादी और ये 3 मिनट योग के बाद वाली दादी में बहुत अंतर, एकदम जैसे नहीं शक्ति बहुत जोर से आ रही। मुझे दादी की भी एक बात उस समय याद आई, अच्छा लगा। दादी कटक से भुवनेश्वर आ रही थी और मुझे दादी के कार में दादी के साथ रहने का सौभाग्य मिला। हम गए थे कटक से भुवनेश्वर लाने को दादी को, जैसे और पीछे सीट में दीदी बैठी थी, दादी बैठी थी और मैं, मुझे आगे वाली सीट दिया था तो मैं पीछे ऐसे मुंह करके दादी से बातचीत कर रही थी, बातें हुई और सुन रही थी, देख रही थी। दादी ने पूछा और कितना समय रहा, कितना समय रहा दादी पहुंचने में, कितने लोग आएंगे। 3 दिन के मुहूर्त में ही वो प्रोग्राम हुआ था। मैंने कहा दादी 1500 से अधिक आत्माएं तो जरूर होंगी, ब्राह्मण भी होंगे तो कुछ कांटेक्ट वाली आत्माएं भी होंगी। दादी ने कहा अच्छा ऐसा है, फिर तो दादी को ताकत भरनी पड़ेगी। अब दादी साइलेंस में बैठती है, तो दादी ने उस बात को एक्सप्लेन किया कि अगर हम स्टॉक जमा करते हैं तो बांटने में बड़ा मजा आता है, और अगर स्टॉक में जमा नहीं है और हम जाके कहीं खड़े हो जाएं, बोल सकते हैं। क्यों? बोलने को तो बाबा ने बड़ा अच्छा ब्लेसिंग दिया है, बहुत अच्छा सभी बोल सकते हैं, लेकिन तीर तब लगेगा, कब लगेगा? जब साइलेंस की शक्ति होगी। ठीक है, आत्माओं को तीर कब लगेगा? जब साइलेंस की शक्ति होगी। तो कल भी ये मनन चिंतन चल रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बोला और जैसे सत्वचन महाराज हो जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा साथ के साथ हो जाता है, आत्माओं को बड़ा उमंग उत्साह आने लगता है, सब नाचने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा होगा, चार बार बोल रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है, फिर आपको उस समय यहाँ पे भी बड़ा चल रहा है, मैंने बोल दिया चार बार, ये लोग कर क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे? तो धीरे धीरे अनुभव ये कहता है कि बाहर की दुनिया महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भीतर का जगत है, भीतर की दुनिया है। और भीतर की दुनिया को एम्पावर करने का सबसे अच्छा साधन साइलेंस। थोड़े लंबे समय की साइलेंस की प्रैक्टिस हम आत्मा को श्रेष्ठ बनाता है। बेसिकली हम सभी आत्माएं श्रेष्ठ हैं। किन्हीं को बात करते सुना, बड़ा अच्छा लगा, कहा कि ऑरा को देखने का मशीन आ गया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योग से ऑरा को देख सकते हैं, बाबा के बच्चे भी हैं, ऐसे दृष्टि दिया और ऑरा देखा। तो बात निकली कि कभी किसी के ऑरा को हमें नहीं देखना चाहिए, सुना? कभी किसी के ऑरा को हमें नहीं देखना चाहिए। बोलो क्यों? क्यों? ऑरा बहुत टेम्पररी है। कोई भी व्यक्ति साइलेंस को प्रैक्टिस करे, एक दो चार दिन भी साइलेंस में बैठता है तो अपने ऑरा को बढ़ा सकता है, सुना? और एक बहुत अच्छा योगी तपस्वी जो कभी क्रोध नहीं करता है, कभी कंफ्यूज नहीं होता है, लेकिन उसी समय क्रोध कर रहा है, कंफ्यूज्ड है, तो क्या होगा? तो उसके ऑरा में फर्क पड़ जाएगा, सुना? आगे चल करके मनुष्य आत्माओं को ऑरा बहुत क्लियर दिखाई देगा। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे लोग होंगे जो आपको चलते फिरते देख करके जान पाएंगे आपकी स्थिति क्या है। जीवन सारा कमाई किया होगा, सुना, लेकिन उसी समय क्रोध आ गया होगा तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? आपकी भक्त दादियां ट्रेनिंग में इस प्रकार से सिखाती थी, आपकी भगत आत्मा ढूंढ रही है, हाँ, छटपटा के ढूंढ रही है, उसी समय उसको साक्षात्कार होने का है, और उस समय आप क्रोध कर रहे होंगे तो क्या होगा? कैसा साक्षात्कार होगा उनको, उनकी देवी का? आप कंफ्यूज्ड होंगे, कैसी देवी बनाएंगे? देखना, कई मंदिरों में मूर्तियां इतनी है, मूर्ति बहुत पावरफुल, लेकिन इतनी कोई सुंदरता नहीं दिखाई है उसमें। शायद भक्तों ने उसी समय साक्षात्कार कर लिया हो जिस समय थोड़ा मन इधर उधर गया हुआ होगा। कहीं ना कहीं हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, लेकिन हम बहुत बचपना कर रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार दिया है ना, तो उस लाड प्यार के कारण हम बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हैं। तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कहां से शुरू करें? साइलेंस से। किसी ने कुछ कह दिया, चलो, किसी ने कुछ कहा, क्या हो गया, खुशी चली गई तो सब कुछ चला गया। गीत है ना, क्या गीत है, जो भी बहुत अच्छा गीत है। तो क्या करना है, बातें आएंगी जाएंगी, लेकिन मुझे मेरे अंतर जगत को इतना शांत शीतल साइलेंस कर लेना है कि बातों का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़े। सुना? और ये लंबे समय की स्थिति जो है वो अंत के समय में काम में आएंगी, वो वृत्ति बन जाती है। जैसा हम करते हैं ना, धीरे धीरे वो हमारी वृत्ति बन जाती है। और ऑल ऑफ सडन जिस दिन हम अपना आईना लेके मुंह देखने बैठते हैं, तो उस समय लगता है, अरे भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ पहुंचना था, कहीं ना कहीं डाइवर्जन हो गया है। सिखाते ना, देखो स्पार्क में एक बहुत सुंदर टॉपिक पे सिखाते थे कि डेस्टिनेशन पे पहुंचना जरूरी है, लेकिन कई बार डेस्टिनेशन बड़ा लंबा लगता है, तो इसलिए क्या करो, माइलस्टोन सेट करो। जब जाते हैं ना रास्ते में, तो देखते हैं बीच बीच में कितना किलोमीटर हो गया भाई, और कितने किलोमीटर है। आजकल तो जीपीएस है, समझ में आ जाता ना, इतने किलोमीटर हो गया, अब इतना किलोमीटर है। तो वैसे ही बीच बीच में माइलस्टोन चेक कर लेना चाहिए, राइट ट्रैक पे हैं, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि सब कुछ पाके हम लूजर रह जाएं। और कुछ आत्माएं पीछे से आएंगी और एकदम हाई स्पीड में जाएंगे। जिस दिन बाबा ने कहा साइलेंस, बैठ गए साइलेंस। पहले से ही काफी ताकत है उनके पास मन को एकाग्र करने की, चित्त को प्रसन्न रखने की। दो और शब्द संकल्प में आए, वो ये था कि क्लीन माइंड क्लियर इंटेलेक्ट, क्लीन माइंड एंड क्लियर इंटेलेक्ट। जब माइंड क्लीन होगा तो बुद्धि अपने आप ही क्लियर होगी, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तब योग लगेगा और बाबा से शक्ति मिलेगी। और उसके लिए क्या चाहिए, बुद्धि की लाइन क्लियर करने के लिए मन क्लीन होना चाहिए। कई बार बिना कारण के ही किसी संकोच बस या और किसी बात से, चलो ये छोड़ो, ये करो, वो करो, ऐसा करके हम अपने मन को लेयर बाय लेयर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन दे देते हैं। बातें रह जाती है, जैसे नहीं कोई चीज को साफ नहीं करो, यूं ही धो लो, तो क्या होता है, कढ़ाई देखी ना कई माताओं की, कभी कभी कढ़ाई काली हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि रोज रोज साफ नहीं करते हैं, तो एक एक लेयर चढ़ के एकदम काली सी हो गई होती है। फिर उसको साफ करने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन रोज रोज अगर साफ कर ले, हाँ, तो ऐसे ही मन के साथ होता है। साफ तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ रह गया, थोड़ा सा कुछ रह गया, थोड़ा सा उसको रख दिया, क्लीन नहीं किया, तो मन में वो कंफ्यूजन सा रह जाता है छोटा छोटा सा। सुना? तो क्या करना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है। इतना मीठा बाबा मिला, इतना प्यारा बाबा मिला, इतना सुंदर संगम युग मिला, और इतना अच्छा दिव्यास्त्र मिला। तो क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। नहीं तो धीरे धीरे देखना, जब हम ज्यादा बोलते हैं ना, तो हमारे बोल का प्रभाव कम हो जाता है, और जब कम बोलते हैं, कई लोग ऐसे ही कम बोलते हैं, बोलने की भी क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी के लिए फिर दिल अंदर भी उतना ही क्लैनलीनेस, उतना ही प्यार, उतनी ही स्थिति चाहिए। और हम ब्राह्मणों से कुछ भी छिपा नहीं है, बाबा ने इतना गुह्य ज्ञान हम बच्चों के सामने यूं रख दिया है, हर बात की समझ हमें है, हर बात की समझ हमें है। जो बाबा के बच्चे कहते नहीं नहीं हम अभी कम समझदार हैं, वो जरा हाथ उठाओ, कोई भी नहीं। एक्चुअली नहीं। बाबा ने अगर कम भी समझदार है मुरली रखती है, पढ़ो, मनन चिंतन करो, पढ़ो, बैठो मेरे पास, मैं हूं आपके साथ। सब चीजों का हमें पता है, भान है, लेकिन कहा ना उपयोगिता कम है। और सबसे बड़ा गुरु क्या है संसार में पता है? अभ्यास, प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस में बाबा ने हमें सबसे अच्छा जो नियम दिया है वो कौन सा है बताइए? दिन के शुरुआत में, जो संसार में और कहीं नहीं है। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है लेकिन प्रैक्टिकल में कम लोग इसको यूज करते हैं, अमृत वेले का योग। सुना? अमृत वेले अगर ठीक उठ करके हम योग करते हैं, कुछ नहीं, बाबा ये लो मैं खाली होके बैठ गया हूँ, भरो आपको जो भरना है। अगर हम इस खुशी से, इस नशे से, इस निश्चिंता से, इस सोच को लेकर के बैठते हैं तो बाबा ऑटोमेटिकली भरता जाता है, भरता जाता है। सुना? और अगर अमृत वेले ही नहीं उठे, बाबा डोलते जाते हैं। देखना कभी कभी, ये देखना ब्राह्मणों के साथ ऐसा बहुत होता है, आप भले कितने आलसी हो के सो जाओ, कभी कभी आपने देखा होगा ठीक 3:30 से बैठ के उठ के आप बैठ गए, खटिए पे ही बैठे सीधे लेकिन सो गए। मतलब बाबा जबरदस्ती भी ब्लेसिंग दे रहा है, कुछ तो ले लो बच्चे, उठो। हाँ, लेकिन क्या होता है, समझो कि हाँ अमृत डल रहा हो लेकिन पात्र डुलक रहा हो तो क्या होगा? हाँ, और हम अगर सो रहे होते हैं तो ऐसा है, बाबा कोशिश तो करते हैं कि जैसे ही हम थोड़े सीधे हों बाबा कुछ डाल दे। हाँ, ऐसा भी अनुभव है, लेकिन करना क्या है, बहुत अच्छी तरह से एकदम अपने आप को भरपूर करना है बाबा से, साइलेंस की शक्ति से, क्योंकि समय कम है। और इस कम समय में हम क्या करेंगे बोलो? कह दिया ना बाबा ने, मौत सामने खड़ी है, इस समय भी मौत आने वाला है, तो क्या करें उसके लिए? पता नहीं, शायद ये व्हाट्सएप मैसेजेस में ही कहीं पढ़ा होगा। दो चीजें बताई, दो लोगों की मृत्यु के बारे में बताया, कंपेयर किया शास्त्र में। एक को पता चला कि उसकी बहन का 8वां गर्भ उसका अंत करने वाला है। कौन था वो? कंस था। कंस को पता चला कि मृत्यु पास में है, और किस रूप में मृत्यु आने वाला है वो भी बेचारे को पता चल गया। उसने क्या किया? और दूसरा एक भी था जिसको पता था कि 7 दिन के बाद ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, वो कौन था? राजा परीक्षित को पता चल गया था कि 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाला है, तक्षप आएगा, दंशन करेगा, मृत्यु होगी। भले उसके राज्य परिवार के लोगों ने अपने हिसाब से सेफ्टी मेजर लिया, लेकिन उसने सोच लिया था कि मुझे 7 दिन के बाद देह त्याग करना है। उसने क्या तैयारी की, इसने क्या तैयारी की? हम सबको पता है कि विनाश हो जाने वाला है, हो जाने वाला है, क्या हो चुका है, ठीक है कि नहीं? बाबा ने ये ग्रेस टाइम दिया है ताकि हम पुरुषार्थ कर सके, हाँ कि नहीं? बिल्कुल। उसी दिन संसार क्या आप मुए तो मर गई दुनिया, बाबा ऐसे कहते ना, क्यों कहते हैं बोलो? आप मुए तो मर गई दुनिया। हाँ, कल ही कोई इसी टूर में ही दिल्ली में, हाँ, किसी ने क्लास बड़ा अच्छा कराया, एक सन्यासी थे तो उनसे पूछा, भाई आश्रम कितना बड़ा है? कहा 40 एकड़ में आश्रम है। अच्छा, रहते कितने जने हैं? 3 जने। अरे इतने बड़े आश्रम में 3 जने कैसे रहते हो? सारा काम कौन करता है? कहता है काम क्या होता है? तो कहा, भाई आपके कपड़ों की सिलाई होती होगी? कहा हम सिले हुए कपड़े नहीं पहनते। कहा क्यों? कहा डेड बॉडी पे कभी सिला हुआ कपड़ा नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम सन्यासी हैं, हम सिले हुए कपड़े नहीं पहनते। भोजन का क्या? कहा क्या भोजन क्या होता है? भोजन भोजन नहीं, शरीर को जिंदा रखने के लिए कुछ उसको देना पड़ेगा, वो भिक्षा पे चलते हैं, हम भोजन बनाने में टाइम नहीं लगाते हैं। जो भी, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही, ये धारणाएं हैं, और हमारी धारणा, बाबा ने ऐसा कुछ भिक्षा पे इस प्रकार से चलने को नहीं बोला, बहुत रॉयल्टी से बाबा ने रखा है, लेकिन ये भी ट्रेनिंग दी। क्या ट्रेनिंग दिया, क्या ट्रेनिंग दिया, ये सफेद कपड़े किस पे पड़ते हैं बच्चे, हाँ, तो इसका मतलब है कि ये कफन जिस दिन हमने डाला उस दिन मर गए, और आप हुए तो मर गई दुनिया, दुनिया मर चुकी है, और उसके बाद ये जो हमें वक्त मिला है किस लिए मिला है सोचो। बाबा ने बहुत बड़ी दया करके हम बच्चों को ये समय दिया है, ये वक्त दिया है, किस लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। अब क्या करना है बोलो, राजा परीक्षित की तरह समय निकालना है कि कंस की तरह। कंस ने क्या किया, कौन मुझे मारेगा, कोई नहीं मार सकता है, इसको भी मारा उसको भी मारा, और अपनी वृत्ति के हिसाब से अति पाप करता रहा, उसका पाप का घड़ा फट गया समझो जैसे, हाँ। और इधर परीक्षित ने क्या किया, वो ज्ञान अमृत को मांझा उठाया, जिस बात को उसने सुना वो भागवत बन गया। खाली उसका ही उद्धार नहीं, लेकिन अनेक जन्मों तक, अनेक पीढ़ियों तक समझो, अनेक आत्माओं का उद्धार होता रहा भागवत से, ऐसा ही शास्त्रों में दिखा है ना। तो मुझे भी मेरा ये जो समय मिला है, बाबा ने जो ग्रेस का टाइम दिया है मुझे, मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए और क्या कर रहा हूँ, ठीक। तो उसको भी ठीक से जानने के लिए, समझने के लिए किस चीज की जरूरत है, कौन सी शक्ति की, साइलेंस की शक्ति की, हाँ। बीच बीच में मौन योग भट्टी करना चाहिए, संगठन में करने को मिलता है, बहुत अच्छा, बड़ा भाग्य। अगर ऐसा कुछ नहीं भी मिल रहा है तो अपने लिए भी हम करें साइलेंस। मधुबन से उत्तम स्थान और कौन सा हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए बड़े भाग्यवान हैं आप आत्माएं जो मधुबन में बैठे, मेरा बड़ा भाग्य रहा, कहा ना समय को याद किया, बहुत बार मधुबन में सेवाएं देने को सौभाग्य मिला। मधुबन जैसा हमारा घर है, ये तो घर है सदा, तो उसकी फीलिंग है, और यहाँ सब प्रकार की सेवाएं की है हमने, सब तरह की, क्योंकि छोटेपन से ही आते रहे तो सब सब डिपार्टमेंट में शायद सेवाएं हमें मिली होंगी बचपन से, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करने को। और हाँ, तो इसलिए वो भी समय याद है जब पुरुषार्थ था, बहुत अच्छी ऊंची क्वालिटी के पुरुषार्थ हुआ करते थे, सूरज भाई होते थे, और एकदम सारा दिन सब सेवाधारियों को टाइट रखते थे, एक से एक घंटे में क्या प्रैक्टिस करना है, दूसरे एक घंटे में क्या प्रैक्टिस करना है, एक एक घंटे का स्वबान और प्रैक्टिस हुआ करता था। तो अभी भी कुछ ना कुछ, हाँ, हमारे सब भाई देखो बड़े हो गए हैं, बहुत बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, आप सब भी कोशिश करके अपने ऊपर खूब अटेंशन रखें, इतना झोली भर के लेके जाएं कि वहां जाकर के कमी ना पड़े, ठीक है। ओम शांति। और ठीक, सभी लोग खुश, सबको बड़ा मजा आ रहा है संगम युग का। देखो दादियों, बाबा की, मम्मा की और दादियों की ये कर्म भूमि है, हिस्ट्री हॉल में भी आकर के एक एक फोटो सबको देखना चाहिए। चार धाम है ना अपने, चार धाम का बड़ा आनंद लेना चाहिए। चार धाम का पूरा आनंद लेने के लिए क्या चाहिए, एकदम साइलेंस में बैठ करके चारों धामों का आनंद लीजिए, खूब अपने आप को भरपूर करिए। ओम शांति। प्रभु का ध्यान।